الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے. بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے. مکتوب نمبر 5 دفتر اول کے حصہ اول سے. ایک مخلص دوست خواجہ برہان الدین کی سفارش، ان کے بعض حالات کے بیان میں یہ مکتوب شریف اپنے پیر و مرشد بزرگوار کی خدمت میں لکھا تھا. حضور کا ادنا ترین خادم عرض کرتا ہے، ایک رسالہ حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے طریقہ کے بیان میں لکھ کر ارسال خدمت کیا ہے. حضور کے ملاحظے سے گزرے گا، ابھی مسودہ ہے. چونکہ خواجہ برہان جلدی روانہ ہو گئے، اس لیے اس کو صاف نقل کرنے کا وقت نہ ملا. خیال ہے کہ بعض دوسرے علوم بھی اس کے ساتھ ملائے جائیں. ایک روز رسالہ سلسلۃ الاحرار نظر سے گزرا، اس وقت دل میں خیال آیا کہ حضور سے درخواست کروں کہ آج جناب خود رسالہ کے بعض علوم کے بارے میں کچھ تحریر فرمائے یا اس فقیر کو حکم دے تاکہ اس کے بارے میں کچھ لکھے. یہ خیال بہت پختہ ہو گیا تھا کہ اسی اثنا میں اس مسودے کے بعض علوم کا فیضان ہوا اور اس رسالہ سلسلہ احرار کے بعض علوم مجمل طور پر اس رسالہ کے ضمن میں بھی بیان ہو گئے ضمن میں بیان ہو گئے. اگر اس مسودے کو اس رسالہ کے تکملہ بنا لے تو اس کی بھی گنجائش، اور اگر بعض مناسب علوم کو اس مسودے سے انتخاب کر کے اس رسالہ کے ساتھ ملا لے تو یہ بھی ایک صورت ہے. اس ایجاد لکھنے کی جرات کرنا خدا ادب کے خلاف ہے. خواجہ برہان نے اس عرصہ میں خوب محنت کی، اور تیسرے سیر سے بھی جو کہ مقام جذبہ کے مناسب کچھ حصہ پا لیے. خواجہ برہان کا دل صبح مالوہ میں معاش کے لحاظ سے ان کا دل پراگندہ رہتا ہے. وہ آپ کی خدمت مبارک میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور ان کے لیے جو حکم فرمائیں گے وہ مبارک ہوگا. رسالہ سلسلہ احرار، یہ اصل میں حضرت خواجہ باقی باللہ قدس روح نے اپنی ان رباعیات کی جو آپ کی بزرگ دقیق تصنیفات میں سے اس میں شرف فرمائی ہے، اس شرح کا نام سلسلۃ الاحرار رکھا تھا. تو حضرت نے مطلب ان پہ جب نظر دوڑائی تو اگرچہ خود اس کی شرح ہے لیکن شرح کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے. تو حضرت نے اس کی کچھ شرح اس طرح مطلب کی، تو وہ اپنا جو رسالہ حضرت خواجگان نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ کے طریقہ کے بیان میں حضرت نے لکھا تھا، اس میں کچھ مضامین اس میں خود بخود آ گئے، اس کی طرف چونکہ توجہ تھی. تو اب حضرت نے اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عریضہ بھیجا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو اس جو رسالہ ہے اس کو سلسلہ الاحرار کا تکملہ قرار دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان سے ان مضامین کا انتخاب کر کے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس رسالہ رسالۃ الاحرار ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کر چاپ دیا جائے. اور خواجہ برہان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے محنت کی ہے. اور یہ تیسرے سیر یعنی سیر عن اللہ باللہ جس کو نزول کہتے ہیں، یعنی عروج تمام جب ہو جاتا ہے اس کے بعد نزول شروع ہو جاتا ہے. نزول میں یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب جہاں سے آئے تھے جس راستے سے آیا ہوتا ہے اس راستے پہ دوبارہ لوٹایا جاتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب فنا کے بعد گویا کہ مطلب بقا دیا جا رہا ہے، اور اب جو ہے نا مطلب کام کی طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ اب جس راستے سے تم آئے ہو اس راستے سے باقی لوگوں کو بھی اللہ تک پہنچاؤ. تو یہ نزول ہوتا ہے. نزول میں پھر یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو مطلب سالک ہوتا ہے اس کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، یعنی منتہی کو عوام کے ساتھ خلط ملط کیا جاتا ہے تاکہ ان میں اور عوام میں بظاہر کوئی فرق نظر نہ آئے. اس کی وجہ ہے کہ مناسبت تبھی ہوتی ہے، اگر مناسبت نہ ہو تو لوگ اس سے فائدہ پھر نہ اٹھا سکے. تو مناسبت کے لحاظ سے جو ہے نا مطلب کیا جائے. ہمارے مولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے گاؤں میں، چونکہ گاؤں میں رہتے تھے تو گاؤں والوں کے ساتھ उनकी ज़ुबान में बात करते हैं, गाय बैलों की बातें किया करते थे, फलाना तुम्हारा बैल का क्या हो गया, ये हो गया, इस किस्म की बातें किया करते थे। तो ज़ाहिर जो ज़मींदार लोग थे वो भी उनके साथ इसी तरह गले मिले रहते थे, तो उनको फ़ायदा हो जाता था। तो जो सेर अनिल्ला बिल्ला होता है, ये असल में गोया कि उरूज से नज़ूल की तरफ आना होता है, यानी यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह जल शानों के मतलब जो है ना, वो तरफ जो तवज्जो जा रही थी उस तवज्जो को मखलूक की तरफ लौटा दिया जाता है। तो ये बातिनी तौर पर अल्लाह के साथ होता है और ज़ाहरी तौर पर मखलूक के साथ होता है। तो ये जो ना, इसको कहते हैं सेर अनिल्ला बिल्ला। मकतूब नंबर 6, जज्बा व सलूक के हासिल होने और जमाली व जलाली दोनों सिफ़तों के साथ तरबियत पाने और फ़ना व बका उनके मुतालिकात के बयान और नस्बत नक्शबंदी के फोकियत के बयान में, ये भी अपने पीर मुर्शिद बुजुर्गवार की खिदमत में लिखा था। हुजूर का कमतरीन खादिम अहमद अर्ज़ करता है, अपना नाम हज़रत का अहमद सरहिंदी था तो अपने नाम को ले लिया, अहमद अर्ज़ करता है कि मुतलक तौर पर हिदायत करने वाले यानी अल्लाह ताला जल्ल शानु ने आनजनाब की तवज्जो आलिया के बरकत से जज्ब व सलूक के दोनों तरीकों, जमाल और जलाल की दोनों सिफतों से इस हकीर की तरबियत फरमाई है। अब जमाल एन जलाल है और जलाल एन जमाल है। रिसाले कुसिया मुसन्निफ़ हज़रत ख्वाजा बुजुर्गार नक्शबंद कुदसुर रहमत के बास हाशियों में इस इबारत को अपने ज़ाहरी मफहूम से पैर कर अपने महूम मतलब पर हमल किया है, हालांकि इबारत अपने ज़ाहरी माने पर महमूल है और ज़ाहरी माने से हटाने और तावील के काबिल नहीं है। उस तरबियत की अलामत मोहब्बत ज़ाती के साथ मुतहक्कुक होना है, उसके तहक्कुक से पहले मुमकिन नहीं है, और मोहब्बत ज़ाती फ़ना की अलामत है, और फ़ना से मुराद अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ का फरामोश हो जाना है। पर जब तक तमाम उलूम पूरी तौर पर सीने के मैदान से साफ़ न हो जाए और सालिक जहल मुतलक के साथ मुतहक्कुक न हो जाए, वो फ़ना से बेरवर नहीं हो सकता, और ये हैरत जहल दायमी है, उसका ज़ायल होना मुमकिन नहीं है, और इसे नहीं कि कभी हासिल हो जाए कभी ज़ायल हो जाए। हाजिर कलाम ये कि मकाम बकाबिल्ला से पहले जहालत महज है, और मकाम बकाबिल्ला हासिल होने के बाद जहालत और इल्म दोनों जमा हो जाते हैं। सालिकीन ऐन नादानी की हालत में शूर के साथ होता है, सालिक ऐन नादानी की हालत में शूर के साथ होता है, और ऐन हैरत के वक़्त में हुजूर के साथ होता है। और ये मुकाम हक़ुल यकीन का मुकाम है कि इसमें इल्म और ऐन एक दूसरे के लिए हिजाब नहीं है, और वो इल्म जो इस किस्म के जहालत से पहले हासिल होता है वह हाथ एतबार से खारिज है, यानी एतबार के लायक नहीं है। इस हालत के बावजूद अगर इल्म है तो अपने आप में है, और अगर शहूद है तो वो भी अपने आप में है, और अगर मारिफत या हैरत है तो वो भी अपने आप में ही है, जब तक कि नज़र बाहर की अशा में है, हासिल बेकार है, बेहासिल बेकार है, अगरचे अपने आप में पर भी नज़र रखता हो, बिरूनी अशा से नज़र बिल्कुल मुनक़ति हो जानी चाहिए। हज़रत ख्वाजा बुजुर्ग यानी ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अहलुल्लाह फ़ना व बगा के बाद जो कुछ देखते हैं अपने आप में देखते हैं, और जो कुछ पहचानते हैं अपने आप में ही पहचानते हैं, उनकी हैरत अपने वजूद ही में है। इस इबारत से भी आमतौर पर बात साफ हो जाती है कि शहूद और मारिफत और हैरत अपने नफ्स में ही है, और बस अपने आप से बाहर की अशा में इनमें से कोई भी नहीं है। जब तक इन तीनों में से कोई एक अमर भी अपने नफ्स से बाहर में है, अगरचे अपने आप में भी रखता है, उसको फ़ना हासिल नहीं है, तो बका उसको किस तरह हासिल हो जाएगी, क्योंकि फ़ना बका में मरतबा की इंतहा यही है, और ये फ़ना मुतलक है, और मुतलक फ़ना आम है, और बका फ़ना के अंदाजे के और बका फ़ना के अंदाजे के मुताबिक होती है, यानी जिस कदर फ़ना कामिल होगी बका भी इस कदर कामिल होगी। इसलिए बाज़ औलिया अल्लाह फ़ना बका के साथ मुतहक्कुक होने के बाद अपने बाहर में शहूद रखते हैं, लेकिन बुज़ुर्गों यानी मशाइख नक्शबंदिया क़ुदसुर अस्रारम की नस्बत तमाम नस्बतों से बुलंद है। नहर के आयन दारिद सिकंदरी दानद, नहर के सर बितराशिद कलंदरी दानद। जब बहुत से कर्न यानी सदियाँ गुजर जाने के बाद इस सिलसिले आली के बड़े बड़े मशाइख में से एक या दो को उस नस्बत के साथ शर्फ बख्शते हैं, तो दूसरे सिलसिले के बारे में क्या बयान किया जाए। यह नस्बत हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक उजदवानी कुलसुरु की नस्बत है, और उस नस्बत को पूरा और कामिल करने वाले हज़रत ख्वाजगान यानी हज़रत ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी कुलसुरु है, और आपके खुलफा में से हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि दौलत से मुशरफ हुए थे। इंकार दौलत कुनून ताकरा दहन ये अजीम काम मिले देखिए किसे। ये अजीब मामला है कि पहले जो बला मुसीबत भी वाक़ हुई थी वो फ़र्द खुशी का बायस होती थी, और ये फ़कीर हल में मज़ीद कहता था और दुनियाई साज सामान में से जो कुछ कम हो जाता था अच्छा मालूम होता था, और ये फ़कीर इस किस्म की ख्वाहिश करता था। और अब जबकि आलम असबाब में नज़ूल वाक़ हुआ है और अपने आजिज़ व मोहताजी पर निगाह पड़ी है, अगर थोड़ा सा भी नुकसान लाहक हो जाता तो पहली झटके में किस्म का रंज पैदा हो जाता है, अगरचे वो जल्दी दूर हो जाता और कुछ भी बाकी नहीं रहता। और इसी तरह अगर पहले आजिज़ बला मुसीबत के दूर होने के लिए दुआ करता था तो इससे बला मुसीबत को दूर करना मकसूद नहीं होता था, बल्कि इससे मकसूद अल्लाह ताला के हुक्म और उन यस्तजिब लकुम मुझसे मांगो मैं कबूल करे की तामील फरमान बरदार ही वजह लाना होता था। लेकिन अब दुआ से मकसूद बला और मुसीबतों का रफ़ा करना है, और वो खौफ और गम जो पहले ज़ाहिर हो चुके थे अब फिर लौट आए, और अब मालूम हो कि हालत शुक्र की वजह से थी, सोह की हालत में आजिज़ व मोहताजी, खौफ हुज़न और गम खुशी जिस तरह के आम लोगों को लाहक होती है इस हकसार को भी थी। इब्तदा में भी जबकि दुआ बला मुसीबत का दफ़ा करना मकसूद नहीं था, दिल को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हाल गालिब था इसलिए मजबूर था। दिल में ख्याल गुजरता था कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की दुआ इस किस्म की नहीं थी जिससे अपने मुराद का हासिल होना चाहते। अब जबकि हादसा उस हालत से मुशर्रफ़ फरमा दिया गया है और मामले की हकीकत वाज़ेह कर दी गई तो मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिस्सलाम तस्लीमात की दुआएँ आजिज़ी और हाजतमंदी और खौफ वज़न की वजह थी, महज़ हुक्म की तामीर के लिए नहीं थी। बाज़ उमूर जो इस फ़कीर पर ज़ाहिर होते रहते हैं हुज़ूर के हुक्म के ताबे कभी उनके अर्ज़ करने से गुस्साही करता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम है, और इसको अगर सादा ज़ुबान में बयान किया जाए तो ये अर्ज़ करूँगा कि मुंतही और मुब्तदी ये एक जैसे नज़र आते हैं, और मुतवस्सित जो होता है ये दोनों से मुख्तलिफ नज़र आता है। ये बुनियादी बात है, और ये फैज़ हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का कि उन्होंने इस बात को वाज़ह तौर पर फरमाया। चूँकि वक़्त के साथ साथ लोगों में इस्तेदाद समझने की कम होती रहती है आली मजामीन की, तो उनको मज़ीद वाज़ह और साफ करना पड़ता है, तो हज़रत ने इसको बहुत ही वाज़ह कर दिया। यानी जो इब्तिदा में मुब्तदी की हालत होती है, मुंतही की हालत उसी तरह हो जाती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि मुंतही उसको अल्लाह के लिए करता है और मुब्तदी उसको अपने नफ्स के लिए करता है, बस इतनी सी बात होती है। रोता वही है, रोता वो भी है, रोता ये भी है, हंसता ये भी है, हंसता वो भी है, तंग वो भी होता है, तंग ये भी होता है, खुशी भी होता है, खुशी भी होता है, बस फ़र्क सिर्फ यह है कि खुशी किसके लिए है, तंगी किसके लिए है, और रोना किसके लिए है, हंसना किसके लिए है, ये अलबत्ता टारगेट का फ़र्क होता है, मतलब ये वाली बात है। इस वजह से हज़रत ने जो इरशाद फरमाया है उसमें जलाल व जमाल के पहले इसके बारे में इरशाद फरमाया कि इसके एक मोहूम सिफत पर बताया गया, हालांकि ये असने असली मामलों यानी मानों में ज़ाहिर होना चाहिए, इसकी तावील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत ज़ाती जो है ये असल में फ़ना की अलामत है। सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बात है। असल में जब तक इंसान को फ़ना हासिल न हो तो मोहब्बत सिफाती हो सकता है, क्यों? वो किसी ख़ास सिफत में मशगूल होता है क्योंकि उसको फ़ना हासिल नहीं है। तो जिस मिसाल के तौर पर एक शख्स है वो माल चाहता है, तो जब अल्लाह ताला उसको माल ज़्यादा देता है तो अल्लाह ताला के साथ बहुत मोहब्बत करता है, और जब माल खींच लेता है तो बस फिर वो नहीं होता। हाँ जी, जब तक सेहत है तो बस जो सेहत चाहता है तो फिर तो शाफ़ी है, बस फिर तो ज़ाहिर मतलब है कि सिफत में मिटा होता है और अल्लाह पाक के गुण गाता है, और जो थोड़ा सा खींच लेता है तो बस फिर इसके बाद वो चीज़ नहीं रहती। इसका मतलब है कि जब तक इंसान की मोहब्बत ज़ाती अल्लाह ताला की किसी को हासिल नहीं है तो अभी फ़ानी नहीं है। क्यों? वजह क्या है कि फ़ना जो है वो इंसान की अपने मतलब जो नफ्स की जो ख्वाहिशात है इसको कहते हैं, यानी मतलब ये इंसान इससे निकला है, मतलब अपने आप को भूल जाए, सारी चीज़ों को भूल जाए, यानी जिन चीज़ों का इलम है वो इलम बाकी न रहे, जहालत हो जाए, इसको फना कहते हैं। इस वक्त में उसको सिर्फ अल्लाह याद होते हैं, लिहाजा चूंकि अल्लाह उसको किसी सिफत के अनवान से नहीं बल्कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अनवान से याद होता है, लिहाजा ये मोहब्बत ज़ाती कहलाता है। जब खुद अपने सिफात इसके फना हो जाए, मतलब उनकी जो ख्वाहिशात है फना हो जाए, तो फिर वो अल्लाह पाक की सिफात के ज़रिए से उसका तारुफ नहीं होता बल्कि फिर वो ज़ात के लिहाज से होता है। तो ये जो है ना मतलब मोहब्बत ज़ाती का, हज़रत ने देखो एक लफ्ज़ में कितने समंदर जो है ना मतलब जो है ना वो बयान फरमाया। और मोहब्बत ज़ाती फना की अलामत है, और फना से मुराद अल्लाह ताला के सिवा हर चीज़ का फरामोश करना है। बस जब तक तमाम उलूम पूरे तौर पर सीने के मैदान से साफ ना हो जाए, यानी इंसान जिन जिन चीज़ों को जानता है और ये जानते कि मैं जानता हूँ तो फानी नहीं है, जिन जिन चीज़ों को ये जानता है और ये जानता है कि मैं जानता हूँ तो ये क्या है, ये फ़ानी नहीं है, अभी इसके अंदर वो रमक बाकी है जो उसको अपनी तरफ मुतवज्जे किए हुए है। हाँ जी, अपनी तरफ मुतवज्जे किए हुए। तो जब इन तमाम चीज़ों से गुजर जाए तो फिर क्या है, फिर ये क्या होता है, फिर ये फ़ानी हो जाएगा। इसके बाद फिर ये क्या होगा, यानी फिर हैरत और जहल में मतलब जो है ना वो आ जाएगा, यानी हैरत और जहल के दायरे में आ जाएगा। और ये हैरत और जहल दायमी होगा, ये नहीं कि मतलब उसी वक्त होगा और बाद में नहीं रहेगा, नहीं, हैरत और जहल इसलिए दायम कि अल्लाह ताला के ज़ात लामुतनाई है और अल्लाह जल्ला शानु के मखलूकात उनमें कोई मतलब इंतहा नहीं है। तो इस वक्त ज़ाहिर मतलब वो चीज़ तो तब्दील नहीं होगी, तो लिहाजा हैरत तो दायमी है। हाँ जी, और चूंकि उसको अपने ऊपर नजर नहीं रहेगी लिहाजा जहल भी दायमी होगी। हाँ, जो अल्लाह ताला वापस लौटाता है इलम, उस इलम वो जहालत के साथ जमा हो जाए। मुंतही में यही बात होती है कि मुंतही जो होता है वो नादानी की हालत में शऊर के साथ होता है, जहालत इलम के साथ जमा हो जाती है। यानी जहालत का मतलब मैं जानता हूँ, ये ख़त्म, अल्लाह ने ये बताया ये हो रह जाता है, मैं जानता हूँ ये ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, इसलिए जो है ना ज़रात फरमाते हैं ना कि मैं का ख़त्म करना सबसे मुश्किल काम है। हाँ जी, तो मैं जानता हूँ ये ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह जानते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब, यह हकीकी मानों में हासिल हो जाता है। उलमाए किराम कहते हैं ना वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह को पता है कि असल क्या है, ये सिर्फ तकल्लुफन कहते हैं, तकल्लुफन कहते हैं, असल में दिल में तो कहते हैं मैं जानता हूँ। हाँ जी, लेकिन तकल्लुफन कहते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो जब अपने से नज़र हट जाए तो फिर वो सही मानों में कहते हैं वल्लाह आलम बिस्सवाब। हाँ जी, ये वाली बात है। तो इस वजह से मतलब गोया कि यूँ समझ लीजिए कि बकाबिल्लाह की हालत में फिर क्या हो जाता है, जहालत और इल्म दोनों जमा हो जाते हैं। सालिक ऐन नादानी की हालत में शऊर के साथ होता है और ऐन हैरत के वक़्त में हुजूर के साथ होता है। अल्लाह अकबर, इसी को मुकाम हकुल यकीन का कहते हैं। इसमें इल्म और ऐन जमा हो जाए, इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन, ये दोनों एक दूसरे के लिए हिजाब नहीं होते। और वो इल्म जो इस किस्म की जहालत से पहले था वो काबिल एतबार इल्म नहीं है, क्योंकि उसके लिए बुनियाद मौजूद नहीं है। जो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म मिलता है उसके लिए बुनियाद है, मतलब जो आपके पास है वो फ़ानी है, वो मा इंदल्ला व बाकी, जो अल्लाह के पास है वो बाकी है। हाँ जी, तो ये जो मतलब ये तो इस हालत के बावजूद अगर इल्म है तो फिर इंसान को अपने आप में जो नज़र आता है वो इलम है, और अगर शहूद है तो वो भी अपने आप में है, अगर मारिफत या हैरत है तो वो भी अपने आप के साथ ही है, बाहर की नज़रों से तमाम चीज़ें कता हो जाती हैं। हाँ जी, तो इसी को हज़रत ने फरमाया कि ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हलुल्लाह, फना व बका के बाद जो कुछ देखते हैं अपने आप में देखते हैं, और जो कुछ पहचानते हैं अपने आप में ही पहचानते हैं। फमन अरफा नफ्सहु फ़कद अरफा रब्बहु, जिन्होंने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हाँ जी, इसलिए कि उनकी हैरत अपने वजूद ही में है। तो इस इबारे से भी साफ तौर पर मफहूम होता है कि शहूद, मारिफत, हैरत ये अपने नफसी में होता है और बस, अपने आप से बाहर के शामिल में से कोई भी नहीं होता जब तक इन तीनों में से कोई अमर भी अपने नफ्स से बाहर में है, अगरचे अपने आप में भी रखता हो। मतलब यानी कुछ इस किधर कुछ इधर ये वाली बात नहीं है, पूरा पूरा यानी बस अपने आप में आ जाता है। तो इस तरह मतलब एक फना व बका में मरतबा की इंतहा यही है, और ये फना मुतलक है और मुतलक फना आम होता है, और बका फना के अंदाजे का जितना किसी को रुजू हुआ है उतना ही नजूल होता है, जितना किसी को फना हासिल हुआ है उतना ही बका हासिल होता है, जितना किसी ने अपने आप को गुम कर दिया उतने उसने अपने आप को पा लिया। मतलब ये वाली बात, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो तकसीम हुआ वो बाकी है, जो तकसीम हुआ वो बाकी है। हाँ जी, जो मतलब जो ये जो बाकी है वो फानी है, मतलब वो तो अभी इधर ही है। हाँ जी, तो ये असल बात है। तो इस तरह मतलब यह है कि मतलब फरमाया कि ये नक्शबंदिया सिलसिले की ख़ास नस्बत है, और ये उनमें भी कभी कभी किसी को मिलती है। फिर फरमाया कि अपना तजर्बा बता दिया, अपना तजर्बा बता दिया कि यह अजीब मामला है कि पहले जब कभी तकलीफ़ मुझे पेश आती थी, मुसीबत पेश आती थी, तो मैं दुआ करता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दुआ करता था, फदून यस्तजिब लकुम, उस मुसीबत को दूर करना मुझे मकसूद नहीं होता था। हाँ जी, लेकिन अब जो दुआ करता हूँ तो अभी वाक़ईतन मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ करता हूँ। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा अल्लाह अकबर, वही हज़रत तानवीर वसीफ की बात आ गई कि मुब्तदी भी यही करता है, जो रोते है तो अपने लिए रोता है। बहुत बारीक बात है, इंशाल्लाह अर्ज करना चाहता हूँ। मुब्तदी भी अपने लिए रोता है कि मतलब तकलीफ आ गई, तकलीफ की वजह से रोता है, खुशी आ गई तो खुशी की वजह से हंसता है, और जो मुंतही है वो भी यही करता है। वो कहते हैं मैं पहले नहीं मतलब वो करता था, फिर कि मैं जो है ना मतलब यह है कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म के, ये मुतवस्सित था यानी मतलब उस वक़्त ये मुतवस्सित चूंकि था तो अपनी चाहतों की तरफ नज़र ही नहीं थी। कोई कि क्लच का जो मामला होता है ना कि एक गियर से दूसरे गियर में जाना होता है तो क्लच में आ जाता है तो किसी एक के साथ भी नहीं होता, तो उसमें यह है कि ये मुब्तदी भी नहीं रहा था, अभी मुंतही भी नहीं था, तो ऐसी सूरत में गुम हो गया था और ऐसे वक़्त में शुक्र की हालत में चला गया था, और शुक्र की हालत की वजह से फिर जो है ना मतलब है कि वो यानी यानी अल्लाह ताला के मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना दुआ करता था, वो दुआ करता था, ये मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ नहीं किया करता था। ये जो है ना मतलब ये वाली बात कहते अब मैं वाकई मुसीबत को दूर करने के लिए दुआ करता हूँ, तो मुंतही भी यही करता है जैसे मुंतही हो गया। क्यों, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उसको अपनी आजिज़ी नज़र आ गई, और अपनी आजिज़ी की वजह से उसने अपनी आजिज़ी को पहचान कर इसके मुताबिक वही किया जो आजिज़ी के ज़रिए से हो सकता है, जो जो आजिज़ी में होता है। जब इंसान बेबस होता है तो फिर यही करता है। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि वो नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि आजिज़ी की वजह से। जैसे देखो मिसाल के तौर पर तकब्बुर खुददारी में जो फ़र्क है, तकब्बुर बुरी चीज़ है, खुददारी बहुत अच्छी चीज़ है। तज़ल्लुल और तवाज़ु में जो फ़र्क है, तज़ल्लुल बुरी चीज़ है, तवाज़ु अच्छी चीज़ है। तो इसी तरीके से मतलब अपने नफ्स के ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मतलब आजिज़ी के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत उमर रहता रो रहे थे बीमारी में, किस बीमारी की शदत से रो रहे थे, तो किसी ने कहा हज़रत आप भी इस तरह करते हैं? फरमाया क्या मैं अल्लाह ताला को अपना पहलवान उन्हें दिखा दूँ? अल्लाह ताला बीमार मुझे इसलिए कहता कि मैं अपनी आजिज़ी दिखाऊँ, तो मैं क्या अपने आप को पहलवान दिखाऊँ? अब देखो ये किसके लिए है, रोते तो हैं अपने लिए लेकिन किस लिए? अल्लाह के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को प्यार किया, तो किसी काफिर ने कहा कि मैंने तो कभी अपने बच्चों को ऐसा प्यार नहीं किया। फरमाया तो अल्लाह की रहमत है, अगर आपके दिल में नहीं है तो मैं क्या करूँ? हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं, यही वो बुनियादी चीज़ है, यही वो बुनियादी चीज़ है, यही वो बुनियादी चीज़ है जो गुम हो चुकी है। इसको दोबारा पाना है। सहाबा किराम में यही सादगी थी, सहाबा किराम में यही आजिज़ी थी, सहाबा किराम में यही खुदशनासी थी। हाँ जी, अपने आप में, आज मुझे ऐसा फरमाते, अपने आप में सहाबा किराम में यही खुदशनासी थी, लिहाजा वो सब कुछ इस बुनियाद पर किया करते थे। वो सादगी अब नहीं है, तकल्लुफात है। वो बेतकल्लुफ बात करते थे, ये तकल्लुफात में करते हैं। अब किस तरीके से इससे निकल सकते हैं, तो जिन चीजों की वजह से है वो चीजें खत्म हो जाए तो फिर हो सकता है ना। यही वो चीज है जो हजरत ने फरमाया कि मैं अब वाकईतन अपने तकलीफ की वजह से परेशान होता हूँ, दुआ करता हूँ, क्योंकि अपने आप को पहचान लिया, अपनी आजिज़ी को पहचान लिया। वजह क्या है, फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है, जो अपनी आजिज़ी को पहचानता है वो अपनी मुसीबत दूर करने के लिए ज़रूर रोता भी है, मांगता भी है, लेकिन उसमें कभी मैं नहीं आता। जबकि आवाम अपने तकलीफ मुसीबत के रोते, लेकिन उनमें जब कभी कोई चीज़ होती है तो मैं आ जाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, बस यही मैं खत्म हो जाता है। तो जो मैं के लिए करते हैं वो और चीज़ है, जो मैं के ख़त्म होने पे करते हैं वो और चीज़ है। ये एक बुनियादी फ़र्क है, आसान तरीके से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल बात तो ऐसी है। मकतूब नंबर 7। अपने बाज़ अजीब गरीब हालात और बाज़ ज़रूरी इस्तफसारात के बयान में ये भी अपने पीर मुर्शिद बुजुर्गवार की खिदमत में लिखा था। हुजूर का कमतरीन खादिम अहमद अर्ज करता है कि जो मुकाम मुहद्दत अर्श के ऊपर है, अपने रूह को हुरूज के तरीक पर उस मुकाम में पाता रहता। और वो मुकाम हजरत ख्वाजा बुजुर्ग यानी ख्वाजा नक्शबंद को सिर के साथ मखसूस था। कुछ ज़माने गुजरने के बाद अपने अंसरी बदन को भी उस मुकाम में पाया। उस वक्त ये बात ख्याल में आई कि आलम सारे का सारा अंसरियात व फलकियात से नीचे चला गया है और उसका नाम और निशान बाकी नहीं रहा। और चूंकि इस मुकाम में बाज़ औलिया कुबार के सवार कोई नहीं था, इस वक्त तमाम आलम को अपने साथ एक ही जगह और एक मुकाम में शरीक पाकर बहुत हैरत हासिल होती है कि पूरी की पूरी बेगानगी के बावजूद अपने आप को उनके साथ देखते हैं। अरे कि वो हालत जो कभी कभी हासिल होती थी, जिसमें कि न खुद रहता था, न आलम, न नज़र में कोई चीज़ आती थी, न इलम में, अब वो हालत दायमी हो गई है। खलकत आलम का वजूद दीदो दानिश देखने जानने से बाहर निकल गया। इसके बाद इसी मुकाम में एक बुलंद महल जाहिर हुआ कि जिसके साथ सीढ़ी रखी हुई है, मैं वहाँ पहुँच गया। वो महल भी इस आलम की तरह आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा नीचे चला गया और मैं हर घड़ी लम्हा बलम्हा अपने आप को उसके ऊपर चढ़ता हुआ महसूस करता था। इत्तेफाकन इन्हें एक दफ़ा जबकि मैं वज़ू के शुक्राने की नमाज तहज्जुद तो वज़ू अदा कर रहा था कि एक बहुत ही बुलंद मुकाम जाहिर हुआ और मशाए नक्शबंद कुदसुर में से 4 बुजुर्ग मशाए को उस मुकाम में देखा और दूसरे मशाए मसलन सईद ताइफा यानी जिन्हें बुदायद मतलब वगैरह को भी इस मुकाम में पाया और बाद दूसरे मशाए भी इस मुकाम के ऊपर हैं लेकिन इसके पायों को पकड़े हुए बैठे हैं और बाद अपने दर्जा के मुकाम इस मुताबिक इस मुकाम के नीचे थे और मैंने अपने आप को इस मुकाम से बहुत दूर पाया, बल्कि इस मुकाम के साथ कुछ मुनासिबत भी नहीं देखी। इस वाक़े से मैं नहायत बेचैन और बेकरार हो गया, करीब तक कि दीवाना होकर निकल जाऊँ और गम गुस्सा की बायस अपने जिस्म को जान से खाली कर दूँ, इन्हें मर जाऊँ। कुछ वक्त इस हालत पर गुजरा, आखिर जनाब की बुलंद तवज्जात से अपने आप को इस मुकाम का मुनासिब देखा। अव्वल अपने सर को इस मुकाम के बिलमुकाबिल पाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर इस मुकाम के ऊपर बैठ गया। तवज्जो गौर करने के बाद दिल में ऐसा गुजरा कि वो मुकाम तकमील का मुकाम है, कि सालिकीन सलूक के मुकम्मल करने के बाद इस मुकाम पर पहुँचते हैं। जिस मजलूम ने सलूक मुकम्मल नहीं किया उसको उस मुकाम से कोई हासिल नहीं होता। देखो फिर भाई आदर ने बात फरमाई, जिस मजलूम को सलूक मुकम्मल करने, अच्छा मतलब यह कि सलूक मुकम्मल नहीं किया उसको उस मुकाम से कोई हासिल नहीं है। और उस वक्त ऐसा ख्याल भी पैदा हुआ कि इस मुकाम पर पहुँचना उस वाक़े का समर और नतीजा है जो आज जनाब की खिदमत मुबारक में रहते हुए देखा था और हुजूर की खिदमत में गर्ज़ किया था कि हज़रत अमीर अली इब्न अबी तालिब करमल तौ फरमाते कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुझको आसमानों के इलम सिखाऊँ। और जब मैंने अच्छी तरह तवज्जो की तो उस मुकाम को तमाम खुलफाए दीन کے درمیان حضرت امیر کرم اللہ وجہ کے ساتھ مخصوص پایا، واللہ سبحانہ وعلم. دوسرے کیس ظاہر ہوتا ہے کہ برے اخلاق و عادات لمحہ لمحہ اور گھڑی نکلتے جاتے ہیں، بعض داغے کی طرح وجود سے نکلتے، بعض اور کبھی دھوئیں کی طرح باہر نکلتے ہیں. بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ سب نکل گئے ہیں، پھر کسی وقت کچھ اور ظاہر ہوتا ہے اور باہر نکلتا معلوم ہوتا ہے. دوسرے عرض یہ کہ بعض امراض اور سختیوں کے دفع کرنے کے لیے توجہ کرنے سے پہلے معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس توجہ کے دینے میں حق تعالیٰ کی رضامندی ہے یا نہیں ہے، یا یہ توجہ اس بات پر مشروط نہیں ہے. اور اشہاد کی ظاہری عبارت سے جو کہ خواجہ عبداللہ رحرار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، مفہوم ہوتا ہے کہ توجہ مذکور اس بات پر مشروط نہیں ہے، اس بارے مناسب حکم فرمائے، اس کے باوجود اس طرح توجہ کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا. تیسرا عرض یہ کہ حضور حق کا حصول ثابت ہو جانے کے بعد طالبان طریقت کو ذکر سے روکنا اور اس حضور کی نگہداشت کے لیے حکم کرنا ضروری ہے نہیں ہے، اور حضور کا وہ کون سا مرتبہ جس میں ذکر نہیں کرتے. لیکن بعض طالب ایسے ہیں جنہیں شروع سے آخر تک ذکر کیا اور ذکر سے بالکل نہیں رکے ہیں اور اپنے کام کے انتہا کو نزدیک تک پہنچا، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے، مناسب ہو تو ارشاد فرمائے. چوتھی غرضی کا خواجہ عبداللہ قدسر اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، آخر میں ذکر کا حکم فرما دیا جاتا ہے کیونکہ بعض مقاصد وہ جو ذکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، آن جناب سے ان مقاصد کرتے ہیں ان فرمانے کی درخواست ہے. پانچویں عرض حضرت اقدس میں یہ ہے کہ بعض طالب طریقہ سیکھنے کے طلب ظاہر فرماتے ہیں لیکن لقمہ غذا میں احتیاط نہیں کر سکتے، اور اس بے احتیاطی کے باوجود حضور اور ایک قسم کا استغراق حاصل کرتے ہیں، اور اگر لقمہ کی احتیاط کے بارے میں ان کو تاکید کی جائے تو طلب کی سستی کی وجہ سے طریقے کو بالکل ترک کر دیتے ہیں. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اور بعض دوسرے طالب ایسے بھی ہیں جو محض ارادت و عقیدت کے طور پر اس سلسلہ شریفہ سے تعلق پیدا کرنا یعنی بیعت چاہتے ہیں، ان کا ارادہ ذکر کی تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے. اس قسم کی بیعت تعلق پیدا کرنا بھی جائز ہے نہیں، اور اگر جائز تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ زیادہ گستاخی کرنا نہایت پیدا بھی ہے. اس میں حضرت نے اپنے معرفت کے مقامات کا ذکر کیا ہے. معرفت تو اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ یوں انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اس کے مقام کے مطابق ہوتی ہیں، تو ان مقامات کا ادراک ان کیفیات سے ہوتا ہے. تو یہاں پر اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے یعنی اپنے آپ کو عرش کے اوپر پاتا تھا، پھر اپنے عنصری بدن کے ساتھ مطلب اس کو پایا، پھر دیکھا کہ دنیا مطلب جو مافیا جو بھی ہے وہ مطلب ساتھ ہے بیگانگی کے باوجود. ہاں جی، پھر اس کے بعد ایک بہت بلند مقام نظر آیا جس کے ساتھ سیڑھی رکھی ہوئی ہے، تو حضرت بھی ادھر پہنچ گئے لیکن دیکھا کہ وہ چار بزرگ ادھر ہیں اور حضرت چند بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، لیکن خود یہ دوسروں کے ساتھ ہے اور وہاں سے کہ ان کے ساتھ کوئی مطلب نسبت بھی نہیں ہے، اتنے دور ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ بہت تکلیف ہو گئی، تو اس تکلیف کی حالت میں ظاہر مطلب آہوزاری کرنے لگے. تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلا کہ یہ اصل میں مقام تکمیل ہے، یعنی جب تکمیل ہو جاتا ہے تو پھر اس مقام پر انسان آ سکتا ہے، اور جذب کی حالت میں تکمیل نہیں ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا صرف جذب کی وجہ سے تکمیل نہیں ہوتی بلکہ جذب کے ساتھ جب سلوک بھی مکمل ہو جاتا ہے تو تکمیل ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اسی کا ثمر و نتیجہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جو مطلب جو ہے نا وہ قلب چلا گیا تھا، اس کی گویا کہ حضرت فرماتے ہیں یہ تشریح تھی. بہرحال اس کے بعد پھر معرفت کی دوسری قسم بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ سے وہ جو برائیاں ہیں وہ نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں، جو برے اخلاق ہیں عادات ہیں مختلف طریقوں سے انسان کو یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کشفی نظر سے آتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں، مختلف طریقوں سے وہ کشف نظر آتا ہے. تو اس میں بعض سوئیوں کی طرح نکلتے ہیں، بعض داغوں کی طرح نکلتے ہیں، بعض دھوئیں کی طرح نکلتے ہیں. ہاں جی، تو یہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف حضرت نے اپنی بات بتائی ہے. تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ پھر حضرت نے کچھ سوالات کیے ہیں، تو چونکہ جوابات ابھی سامنے نہیں آئے لہٰذا اس کے بارے میں ہم میرے خیال میں بات قبل از وقت ہے. جب کسی جگہ ان کے جوابات سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بتا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے فیض و برکات سے مستقل حسن نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبی. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب سلف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله.